महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 2 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं
भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भगवान रचित यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है। यह षटखंडागम का छठा खंड है। जो आचार्य भूतबलि की रचना है उसका यह प्रथम प्रकृति बंध अधिकार यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। कल से हमने प्रारंभ किया था। यह मंगलाचरण में तो उन्होंने 6 श्लोक बताए, उसमें से हमने भी चौथा रोज हम मंगलाचरण रूप से उसी को पढ़ेंगे। हम अभी आए हैं 6 नंबर के पृष्ठ पर। यहाँ सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है शुरुआत में ही। ये अनुवादकर्ता ने मंगल और उन्होंने अलग अलग ग्रंथों में से सिद्ध है, अरिहंत है, आचार्य है, उन संबंधी मंगलाचरण रूप से श्लोक लिए हुए हैं। उसमें उन्होंने 8वीं पृथ्वी और सिद्धशिला वगैरह उसका भी वर्णन कल किया था। यहाँ तक हम आए थे कि उपाध्याय को भी नमस्कार किया था। हाँ, आपका प्रश्न है वात वाले सिद्धशिला के ऊपर है कि नीचे है, यानी सिद्धशिला किसमें? 8वीं पृथ्वी के अंदर है। तो उस पृथ्वी के नीचे 20,000 से 60,000 योजन मिलकर, तीनों वात वाले मिलकर इतना बड़ा है, और उसके ऊपर भी है।
वो
हाँ ऊपर है, नीचे भी है, ऊपर भी है। नीचे कितना है? 20,000 योजन का, और ऊपर 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष, 1 कोस में कम। इस तरह से सब मिलकर योजन में इतना कम, इस तरह ये योजन सब जगह है ना। सूक्ष्म एक के नहीं, पांचों प्रकार के स्थावर, पांचों सूक्ष्म स्थावर पूरे लोक में विराजमान है, विद्यमान है। उसमें सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म निगो, सब 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 ले लेना उसमें। तो सूक्ष्म पंचेंद्रिय भी हो गए ना। सूक्ष्म वैरायटी मात्र एक इंद्रिय में होती है। हाँ देखो, अभी यहाँ से हम 5वें नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। क्या किसमें? ऊपर है ना, देखो 8वीं पृथ्वी के नीचे भी वात वाले और ऊपर भी वात वाले। मान लेते ना ये 8वीं पृथ्वी है, 8 योजन, ये तो 8 ही योजन है। उसके नीचे 20,000 और 20,000 योजन वाले तीन नीचे है, और ऊपर 2 कोस, 1 कोस और
ये नीचे बीच में क्या है? 20,000 का
7,000
गैप नहीं है। देखो देखो, ये उन्होंने 2 कोस के कितने किए? 4,000 धनुष है। 1 कोस के कितने किए? 2,000 धनुष किए, और ये 1575 धनुष है। वैसे उसमें 1575 गिनने चाहिए
थे।
गैप नहीं है बिल्कुल, एक के एक लगते हुए, कोई बीच में कोई गैप नहीं है। ये तीन बताने के लिए मैंने तीन लाइन ये की, एक के नीचे एक, जैसे जैन भूगोल में हमने देखे थे ना किस तरह से है। देखो उन्होंने लाया ईशद प्रागवार। हाँ, कहाँ से? ऊपर से
लोक का
अंत, वही तो बताए ना। लोक के अंत से कितना है तो तीन वात वाले नीचे है नेचुरली। ये नहीं नहीं वो नहीं लेना है आपको, फिगर लें वात वाले का जो फिगर है ना, देखिए हर एक पृथ्वी के नीचे वात वाले होते हैं और आठवीं पृथ्वी के नीचे भी वात वाले और ऊपर भी है। देखो इस तरह से ये जो है ना, अब मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये आठवीं पृथ्वी है, ये सिद्ध शिला बताइए, ये ब्लैक है वो तो आठवीं पृथ्वी का ही पार्ट एंड पार्सल है। सिद्ध शिला के ऊपर ये ब्लू है, येलो है और रेड है, तीन बताए ना, तो ब्लू है वो क्या है, उल्टा घनोदरी वात। फिर घनवात ऊपर नहीं, पृथ्वी को लगते हुए घनोदरी, फिर घनवात, फिर तनुवात, नीचे भी उल्टा है, इसे क्रम है, पृथ्वी को लगते हुए घनोदरी वात होता है, फिर घनवात और तनुवात, उल्टे भी ऊपर उल्टे क्रम से, वो कितना है, दो कोस, एक कोस और 1575 धनुष। एक्चुअली वो 1575 धनुष है ना, तो उसमें से सिद्धों की अवगाहना कम करने के लिए उन्होंने 525 कम किए, परंतु वो सिद्धों की अवगाहना है, वो ऑर्डिनरी धनुषों में है और ये महाधनुष है, फिर भी उन्होंने मिलकर उसको 7050 कह दिया था। कर मनुष्यों की जो हाइट है वो ऑर्डिनरी धनुषों में होती है, अंगुल कहो, हाथ कहो, धनुष कहो, और जो क्षेत्र की क्षेत्र नापा जाता है वो महाधनुषों में, महायोजनों में, महाकोशों में मापा जाता है।
कितने गुना रहता है?
500 धनुष, 500 गुना धनुष नहीं, 500 गुना ऑर्डिनरी अंगुल से, प्रमाण अंगुल 500 गुना है, प्रमाण अंगुल से जो कोस बनेंगे, जो धनुष जो कुछ बनेंगे आगे, वो सारे 500 गुना हो गए, महा में वो 500 गुना होते हैं। ये कल इसकी अपनी बात हुई थी। अभी हम 5 नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर है 6, महाबंधक पुस्तक पहली, पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 6, नीचे का 5वां नंबर का भी वो गाथा हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो उपाध्याय तक आ गए ना, हम आचार्यों को, उपाध्यायों को नमस्कार किया है, अब पढ़ेंगे। दुहत्युवति सा विणदीय तिहुवन भवियाण सुठुरायेण परिठवियाधम अपवा सुअजलवाण पयाणेन। उसका अर्थ, दुख रूप तीव्र प्यास से पीड़ित, दुहत्युवति सा, तिसा ने तृषा, तीन लोक के भव्यों के प्रति, तिहुवन भवियाण प्रशस्त रागवश, ये किसकी, अभी साधु उपाध्याय तो हो गए ना, उपाध्याय की बात चल रही, अच्छा उपाध्याय की बात चल रही, नहीं नहीं फिर भी यहाँ पर भी उपाध्याय की बात कर रहे, यह दोबारा उपाध्याय को ही लिया है। तो कहते दुख रूप तीव्र प्यास से पीड़ित तीन लोक के भव्यों के प्रति प्रशस्त रागवश, ये जब अंतरंग में ठहर नहीं पाते हैं मुनिराज, तो उनके ऐसा ही प्रशस्त राग आता है, तो उसके फलस्वरूप भव्य जीवों को ये मार्ग बताने का राग, शुभ राग, इसको प्रशस्त राग कहा। जिन्होंने श्रुत ज्ञान रूपी जल पिलाने के लिए, किसी को प्यासा देखते हैं तो हमें पहला विकल्प क्या आता है, जल पीना। हाँ, तो ऐसा तो कहते कि दिगंबर मुनिराज है, उनके कमंडल में पानी है और कोई वहाँ प्यासा है जीव, तो वो जाके कमंडल का पानी नहीं पिलाएंगे, ये उनकी भूमिका में ऐसा राग नहीं आता है। हमें तो, हमने अपने को शरीर रूप माना तो हमें तो पहला विकल्प उसको पानी पिलाना, तो वो तो उसको श्रुत ज्ञान रूपी जल पिलाएंगे, ये मान लेते। मरणासन्न भी तो उनको पता कि अभी तो इस जीव को तो, अरे तू तो कौन है, उसको पहले उपदेश दे देंगे। तो श्रुत ज्ञान रूपी जल पिलाने के लिए धर्म रूप प्रपा यानी प्याऊ स्थापित की है। प्याऊ समझते ना, पहले आपने देखे कभी, बम्बई में भी बहुत जगह थे इसको, अभी निकाले सब जगह जगह वो ऐसे बांधते थे रेगुलर नल बल उसमें होते थे बहुत पहले के डोंगरी में फाउंटेन में भी कहीं के बहुत जगह थे। अच्छा भी रहा है और गांव में भी ऐसे वहाँ बड़े बड़े जिसको रांजन कहते बड़े बड़े ऐसे मिट्टी के घड़े ऐसे रखते हैं और वहाँ आदमी भी बिठाते हैं सबको दिलाने इसको प्याऊ कहते हैं। तो धर्म रूप प्याऊ स्थापित की है वे उपाध्याय सदा प्रसन्न हो गए। वो प्याऊ कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं होते ऐसे दानशूर व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही सच क्योंकि जीवों को प्यास लगती है तो कहीं पर भी आने जाने के रास्ते में पथिकों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। नीचे देखो फुटनोट में ये एक नंबर का उपाध्याय सदा प्रसन्न होवे शंका ये पूछता है राग परिणाम मोहनीय कर्म का भेद है। मोहनीय कर्म घातिया कर्मों में प्रमुख है। घातिया कर्म जब पाप प्रकृतियों में अंतर्भूत है तब राग भाव भी पाप प्रकृति रूप स्वयं सिद्ध होता है यानी राग है वो भी पाप है मोहनी का भेद है वो समझ में ना प्रश्न। अतएव पाप प्रकृति रूप राग परिणाम को सुठ रूप कहना कैसे उचित होगा तो उसको शुभ क्यों कहते हैं उसको पुण्य परिणाम क्यों कहते है तो वो तो पाप प्रकृति का ही वो फल उसका निमित्त से बना है। समाधान इस विषय में संदेह निवारण हेतु महर्षि कुंकुन स्वामी के प्रवचन सार से प्रकाश प्राप्त होता है। वहाँ गेयाधिकार में राग भाव के शुभ तथा अशुभ रूप भेद कहे गए हैं। सुहो व असुहो हवदि रागो उक्त ग्रंथ के चारित्र अधिकार में लिखा है रागो पसद्ध भूदो राग प्रशस्त रूप होता है अतः राग परिणाम प्रशस्त रूप भी होता है भी लगाए ना यानी अप्रशस्त भी होता है प्रशस्त भी होता है। यह कथन आगम के प्रतिकूल नहीं यानी राग को प्रशस्त कहना कथन है ना वो तो आगम के विरुद्ध तो है ही नहीं है। राग को शुभ या प्रशस्त कहने का कारण यह है उसके द्वारा पुण्य कर्म का बंध होता है। जिस रागात्मक चित्त वृत्ति के द्वारा पुण्य कर्म का बंध होता है उस पुण्य बंध के उत्पादक राग भाव को आगम में शुभ राग या प्रशस्त राग माना गया है शुभ भाव पुण्य बंध का कारण कहा गया है। कुनकुन स्वामी ने लिखा है ये प्रवचन सार में सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावत्ति भविय मन्नसु परिणामो नन्नगदो दुखय दुखक्षय कारणम समये। शुभ परिणाम रूप राग भाव से पुण्य का बंध होता है अशुभ भाव से पाप का बंध होता है। अन्य में रमण न करने वाला शुद्ध भाव अन्य में रमण नहीं करने वाला ने अपने में करने वाला आगम में समस्त दुखों के क्षय का कारण कहा गया है। इस कारण शुभ राग भाव से प्रेरित होकर उपाध्याय परमेष्ठी दुखी जीवों का संताप दूर करते हैं यानी दुखी जीवों का दुख संताप कैसे कम हो जावे वो अपना स्वरूप को पहचान कर अपने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करे तो उसका मार्ग उपाध्याय परमेष्ठी हमें बताते हैं। भावार्थ
यहाँ पर एक प्रश्न है।
हाँ
यहाँ ऊपर सात नंबर के पृष्ठ पर
हाँ
पहले लाइन में लिखा है तीन लोग के भव्यों के प्रति प्रशस्त यानी ये भव्यों के प्रति लिखने का कारण क्या है यानी अभव्यों को नहीं
उनका तो परिणाम सबको उपदेश देने का है भव्य लोग उसको सुनेंगे इसलिए भव्यों के प्रति राग वश ऐसा कहेंगे। अभव्यों को भी प्रायोगिक लब्धि तक तो बातें होती है उनके भी तो देशना लब्धि है कि नहीं तो उनके भी देशना देने वाले भी है और वो लेने वाले भी उनको कहेंगे कि नहीं कहेंगे हम परंतु उनको आगे करण लब्धि प्राप्त करके वो सम्यक तो नहीं प्राप्त करने वाले है तो ये सहज कथन पद्धति है ये कि भव्यों को उपदेश दिया सभी क्योंकि अभव्य वैसे भी तीव्र मिथ्या दृष्टि वो उपदेश सुनने को भी तैयार नहीं होगा और ऐसे समय में कोई अरे नमोकार मंत्र भी सुनाते तो वो नहीं सुनाता सुहाता किसी भावार्थ इस जगत के प्राणियों को विषयों की लालसा से जनित संताप विषयों की लालसा रूप तो है, वो लालसा इटसेल्फ संताप है, और कभी कभी वो हाथ के जो विषय छूट जावे तो और भी शोक रूप परिणमित हो रहा है, आर्त ध्यान करता है और वो प्राप्त होते हैं तो रौद्र ध्यान में चढ़ जाता है, तो संताप ही दोनों ओर से। तो कहते इस जगत के प्राणियों को विषयों की लालसा से जनित संताप सदा दुखी करता है। उसको क्या लगता था, जब मैं तो मौज मजा करता था मैं बहुत सुखी था, जैसे उसमें जो हम कहीं रौद्र ध्यान रूप चल रहा है, विषय यानी परिग्रहानंदी वाला जो चल रहा है, मौज मजा कर रहा है बहुत, और ऐसे में क्या होता है, कभी किसी के मौज मजा करने के गए वहां किसी की मौत हो गई और देखकर इतना घबरा जाता है, लगता है अभी मेरे को जीना नहीं, अभी सब खलास हो गया मेरा। यानी जितना रौद्र ध्यान करता था उतना ही तीव्र आर्त ध्यान हो जाता है उसका, यानी किसी का इष्ट का वियोग हो जाए वो नहीं सुहाता, फिर उसको लगता है अभी मुझे के भी जीना नहीं है। यानी ये क्या हुआ, वो अगर उसको सचमुच जिसको हम कहेंगे वैराग्य है, तो उसको वो हर्ष के परिणाम भी इतने तीव्र नहीं होंगे, उसमें उसको सुखबुद्धि नहीं होगी, तो उसमें सुखबुद्धि है वो अभी हाथ से चला गया है तो तीव्र दुखी होकर लगता है उसका, अरे मैं तो वैराग्य हो, मुझे वैराग्य आया, इसको स्मशान वैराग्य कहते हैं। यानी जीव दुखी क्यों है, विषयों की लालसा से जनित संताप सदा दुखी करता है। पंचेंद्रिय विषयों की लालसा पड़ी है ना, लालसा तीव्र इच्छा है जिसको हम संज्ञा भी कहते हैं ना। महान पुण्यशाली, पुण्यशाली यानी पुण्य का जो उसका उदय चल रहा है, देवेंद्र यानी देवों के इंद्र, चक्रवर्ती आदि भी विषय तृष्णा के ताप से नहीं बच सके हैं, क्योंकि वो जो भोग भोग रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे विरागी होकर भोग रहे क्या, वैसे उसमें भी चल रहा है उनका यथा योग्य, जो उनकी भूमिका के अनुसार, उनकी तृष्णाग्नि तो और अधिक प्रज्वलित रहती है, क्योंकि सारे ही मुबलक है ना, हम उनको क्या दुख है, परंतु उनको विषय भोगों की रुचि है वही उनको दुख है। इस तृष्णा की शांति के लिए यह जीव विषयों का सेवन करता है। क्या कहते हैं, वो विषय तृष्णा के ताप से नहीं बच सके, उनकी तृष्णाग्नि, तृष्णाग्नि के नहीं वो तृष्णा रूपी अग्नि और अधिक प्रज्वलित रहती है, और इस तृष्णा की शांति के लिए यह जीव विषयों का सेवन करता है। देखो ये दुखी क्यों है, तृष्णा कहो या इच्छा कहो, जीव अपनी इच्छा से दुखी है, उसको क्या चाहिए, विषय चाहिए, क्यों, उसमें से सुख मिलेगा ऐसी वहां बुद्धि पड़ी है, तो वो विषय मिलने से उसको सुख होता है, क्यों होता है, उसको सुख क्यों लगता है, इच्छा की तृप्ति नहीं, इच्छा मिटी तृप्ति काहे की होगी, दूसरी इच्छा तैयार हो रही है तब तक, उसको जो सुख लगता है, पहले दुख किसका था, इच्छा का, इच्छा क्यों रहा था, वो चीज के अभाव था तभी इच्छा थी, भोजन तैयार है परंतु खाने की इच्छा है, जब तक वो थाली में सामने नहीं आता है तब तक इच्छा है, अभी खाने लगा तो वो इच्छा नहीं रही इसलिए उसको सुख लगता है, वो विषयों में से कोई सुख है ही नहीं है, अपनी ही इच्छा से दुखी था और वो चीज प्राप्त होने पर उसकी वो इच्छा नहीं रही, दूसरी इच्छा चालू हो गई बाय दैट टाइम, इसलिए उसको लगता है कि मैं सुखी हो गया। तो कहे हाँ फापरा, अच्छा जलेबी खाते खाते कंटाला आता है तो बीच में कोई फापरा चाहिए, चटनी चाहिए, क्या चाहिए। तो कहते तृष्णा की शांति के लिए जीव विषयों का सेवन करता है, परंतु किंतु इससे वेदना तनिक भी न्यून न होकर उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हुआ करती है। जिस प्रकार पिपासाकुल, पिपासा यानी प्यास, उससे आकुल व्यक्तियों की तृषानिवृत्ति निमित्त, तृषानिवृत्ति उनकी प्यास बुझाने के निमित्त उदार पुरुष जिसको हम कहते हैं दाता, दातार प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। पहले के जमाने में बहुत ऐसे प्याऊ गांव-गांव में या रास्तों में भी होती हुआ करते थे, जिससे सबको मधुर शीतल जल की प्राप्ति हो। उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी ने परम करुणा भाव से विषयों की तृष्णा से संतप्त भव्यों के कल्याणार्थ श्रुत ज्ञान रूप प्रपा ने वो प्याऊ स्थापित की है। उनके द्वारा शास्त्र का उपदेश होते रहने से तथा आगम का शिक्षण होने से भव्यात्माओं की विषय तृष्णा कम होती जाती है और वे आत्मोन्मुख बनकर, आत्मोन्मुख ने आत्मा की दृष्टि करते, आत्मा के सन्मुख होते जाते हैं, विषयों की आशा ही नहीं करते हैं। यानी वो तो वो इच्छाएं उत्पन्न ही होना मिट जाता है, कहो या बहुत कम हो जाता है। हम भी तत्व ज्ञान का अभ्यास पूर्व नहीं करते थे और अब करते थे और अभी इसमें इतने डीप है तो हम अपने ही परिणामों से माप सकते हैं कि पहले बाह्य चीजों के प्रति कितना उत्साह लगता था और अभी उसमें कुछ ऐसा लगता है कि बोझ लगता है। कोई चीज करने भी पड़ती है, कुटुंब के लिए कहो या समाज के लिए कहो या जो कोई अन्य चीज के लिए, वो बोझा रूप लगती है क्योंकि सारा उत्साह भी इसमें लगता है। तो उनकी ये विषयों की आशा ही नहीं रहती है। श्रुत ज्ञान प्रपा के नहीं रहती हो, विषयों की आशा ही नहीं, उनके द्वारा शास्त्र का उपदेश होते रहने से तथा आगम का शिक्षण होने से भव्यात्माओं की विषय तृष्णा कम होती जाती है और वे आत्मोन्मुख बनकर विषयों की आशा ही नहीं रहती है चाहिए। नहीं नहीं, वो करने की बात नहीं, कम होती है की बात है ना। पहले विषयों की तृष्णा थी, अब विषयों की आशा ही नहीं रहती है, रहती करती के बदले रहती है। आगे पढ़े हमें, श्रुत ज्ञान प्रपा के जल का पान करने से भोगों की अभिलाषा रूप तृषा दूर होती है, दूर होती है, वो अभी उत्पन्न ही नहीं होती है, तथा आत्मा स्वरूप की उपलब्धि कर महान शांति का लाभ करती है। ये स्त्रीलिंग, आत्मा स्त्रीलिंग के अर्थ में हिंदी में आता है ना, तो आत्मा क्या करती है, महान शांति का लाभ करती है। कैसे, स्वरूप की उपलब्धि कर, स्वरूप की तो, स्वरूप तो अनादि से है ना, परंतु उसका पता नहीं था, मालूम नहीं था, उसका लक्ष्य नहीं था, तो उसकी उपलब्धि हुई ने उसका लक्ष्य करके पर्याय में आत्मा का अनुभव हो गया। द्वादशांग रूप यानी 12 अंग रूप जो जिनवाणी है, महाशास्त्र सिंधु में अवगाहन कर अपनी पिपासा की शांति साधारण आत्माएं नहीं कर पाती, अतः उनके हितार्थ प्रपा बनाइए। क्या कहना चाहते हैं, यानी जो साधारण जन सामान्य हमारे जैसे, वो बड़े बड़े शास्त्रों का अभ्यास करके उसमें से माल हासिल नहीं कर सकते, उसमें से अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते, तो ये प्याऊ वहां तो पानी उपलब्ध है, वहां से जाके हम ले सकते हैं। ऐसे ही तो उनके हितार्थ प्रपा बनाएंगे, जहां अपनी मंद मति रूप चुल्लू में श्रुत रूपी पानी भरकर आत्मा पिपासा की शांति करती है। जहां ऐसे वो प्याऊ होते हैं तो वहां नल हो गए या जो पानी देने वाले कोई होते हो, तो कैसे पिया जाता है, अपने चुल्लू में ऐसे लेकर, तो वहां तो डायरेक्ट मिल जाता है, तो अपनी जितनी कैपेसिटी है वैसे वो अब हाँ आत्मा पिपासा की शांति करती है। जितना जितना यह जीव श्रुत ज्ञान के रस का पान करता है और अपनी आत्मा को तृप्त करता है, उतना उतना वह संताप मुक्त हो शांति लाभ करता है। देखो बहुत अच्छा पूरा भावार्थ है, सुंदर बताए। इन्हें जीव दुखी है अपनी अभिलाषा ये तृष्णा विषयों की उससे, और श्रुत ज्ञान के अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से आत्मोन्मुख होता चला जाएगा तो ये उसका दुख भी मिटते चले जाएगा। 6 नंबर, संधार्यसी लहरा उत्तार्य चिरपमाद दुस्सील भरा साहु जयंतु सौवे शिव सुहपह संठियाहु निकलिय भया। अर्थ, जिन्होंने शील रूप हार को धारण किया है, चिरकालीन प्रमाद तथा कुशील के भार को दूर कर दिया है, और जो शिव सुख के मार्ग में स्थित है, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है ना, आगे बढ़े है बहुत, तथा निर्भीक है, निर्गलीय भया, भय को निर्गलित कर दिया है, यानी वो निर्भीक हो गए हैं, वे सर्व साधु जयवंत हो। सर्व साधु कहने से लोगों को लगता है दुनिया भर के सब साधु, तो साधु उनको कहेंगे जो दिगंबर भावलिंगी संत है, उनको यहाँ साधु कहने में आता है। भावार्थ, हार के धारण करने से कंठ शोभनीक मालूम पड़ता है, इसीलिए साधुओं ने शील रूप हार से अपने कंठ को भूषित कर दिया है। वैसे तो कोई हार बार नहीं धारण करते हैं, परंतु ये साहित्यिक भाषा है। कंठ में स्थित हार प्रत्येक के देखने में आता है। साधुओं की दिगंबर वृत्ति होने के कारण उनकी शील रूपी हार को प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है। प्रायः संसारी जन प्रमाद तथा कुशील में मग्न रहता है। कुशील यानी अनात्म भाव, शील क्या है, अंतरंग में आत्मस्थिरता, वही शील है, और जो नहीं है वो कुशील है, जिसको अनात्म भाव कहा, उसमें मग्न रहा करते हैं। किंतु मुनिराज प्रमादों का परित्याग करते हैं तथा ब्रह्मचर्य में निमग्न रहने के कारण कुशील रूप विकारी भाव से दूर रहते हैं। ये ब्रह्मचर्य ने सच में तो अंतरंग में स्थिरता और बाह्य में भी वो ब्रह्मचर्य तो है ही उनके। निरंतर कर्म शत्रुओं का संहार करने में संलग्न रहने के कारण उनके पास प्रमाद का अवसर ही नहीं रहता। आत्म कल्याण में वे सदा सावधान रहते हैं। ये जो सावधानी है आत्मा में, उसी को जागृत अवस्था भी कहने में आता है। महर्षि पूज्यपाद के शब्दों में वे मुनिराज बोलते हुए भी मौनी के समान रहते हैं, गमन करते हुए भी नहीं गमन करते हुए सरीखे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते सदृश हुए सदृश है, कारण उन्होंने आत्म तत्व में स्थिरता प्राप्त की है। यानी हमें तो वो बाहर की उनकी क्रिया दिखती है, पर उस समय भी उनकी तो आत्म स्थिरता सदैव कायम है। कल वो वचनामृत में बोल आया था ना, वो तो शुभ में हो अशुभ में या शुद्धोपयोग में हो, चैतन्य के तलिए पर की दृष्टि कभी नहीं हटती, उपयोग भरे अंदर हो या बाहर हो। ये तो मुनि की अवस्था और कितने उच्च प्रकार की है। इसलिए कहते कि बोलते हुए भी मौनी के समान है, गमन करते हुए भी नहीं गमन करते हुए के सरीखे है, देखते हुए भी नहीं देखते हुए सदृश है, क्योंकि आत्म तत्व में सदैव स्थिरता है, वो छठे में हो या सातवें में हो। संपूर्ण परिग्रह का परित्याग करके तथा सकल संयम को अंगीकार करने के कारण वे निराकुलता पूर्ण यथार्थ निर्वाण सुख के मार्ग में प्रवृत्त है। संपूर्ण परिग्रह कहने से केवल बाह्य की बात नहीं लेना है, मूल में तो अंतर में मिथ्यात्व और सारे कषाय है, वही तो परिग्रह है। उस संपूर्ण परित्याग के उसमें भी लेना अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का परिग्रह। उन्हें जीवन की न ममता है न मृत्यु का भय है, क्योंकि बाकी तो अज्ञानी प्राणी या तो बहुत काल जीवित रहना चाहता है, या सामने कोई भयानक रोग वगैरह देखते थे मुझे जल्दी मरण आ जाए, इससे चलता है। कभी कभी तो कषाय के आवेश में जाकर आत्महत्या भी कर लेता है। परंतु यहाँ तो कोई ना जीवन की ममता है ना मृत्यु का भय, क्योंकि हम तो इस शरीर का तो संयोग है, हम तो अभी भी इससे जुदे ही है, तो ये इसका वियोग जल्दी हो गए या लेट में हो गया हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तिलतुष मात्र भी परिग्रह न रखने से, तिलतुष समझते हैं, तिल का छिलका, हाँ वो तुष, उतना भी परिग्रह न रहने से किसी प्रकार की भीति नहीं है। हमें भय क्यों लग रहा है, अरे कोई हमारा धन चुरा के ले जाए, है ना, कहीं ना कहीं कोई ठग न ले, यह भय तो हमेशा बना रहता है। वे और उनके तो कोई परिग्रह ही नहीं है, बाह्य तो परिग्रह ही नहीं, और अंतरंग में भी किसी के प्रति लगाव नहीं है, तो कोई भय का कारण ही नहीं रहा। वे आत्मा को अजर अमर तथा अविनाशी आनंद का भंडार समझ भयमुक्त रहते हैं। ऐसे उज्जवल आत्माओं के प्रसाद से अनुवादक निर्विघ्न रूप से ग्रंथ समाप्ति के लिए मंगल कामना करता है। ये सब जो अभी हमने देखे हैं वो सब अनुवादक ने ये सब डाले हुए, जो श्लोक जो है गाथाएं वो मूल ग्रंथों में से ली हुई है, भावार्थ उन्होंने अपनी ओर से लिखा है। अब मूल ग्रंथ का मंगल, मूल ग्रंथ का मंगल यानी यहाँ ये महाबंध नामक जो 7 पुस्तकें हैं इसका जो मंगल है, तो भूतबली आचार्य ने इसके रचना की हुई है। यहाँ जो सूत्र कहेंगे या जो बोर्ड में पहले लिखेंगे या प्राकृत में जो लिखा है वो सब भूतबली आचार्यों की रचना है। ये सुमेरु है ना, सुमेरुचंद दिवाकर ने पहली पुस्तक का संपादन और वो सब उन्होंने किया है। यानी उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया कि ये ग्रंथ जो बाहर लाने में उसकी प्रतिलिपियां बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाकर्म प्रकृति प्रावृत के प्रारंभ में गौतम गण द्वारा विरचित मंगल को वहां से उद्धृत कर, देखो क्या कहा, ये महाकर्म प्रकृति प्रावृत जो ओरिजिनल गणधर आचार्यों की रचना थी, क्योंकि 12 अंग जो है उन्होंने रचित किए, तो वहां उन्होंने जो मंगल किया था वही यहाँ भूतबली आचार्य बता रहे। तो उसको उद्धृत कर, उद्धृत करने ने उसका कोट करना, भूतबली आचार्य इस शास्त्र का मंगल मान ग्रंथारंभ कहते हैं, यानी उसी को यहाँ लिखकर ग्रंथ का आरंभ करेंगे। द्रव्यार्थिक नयाश्रित बहुवे जीवों के अनुग्रहार्थ गौतम स्वामी सूत्र का प्रणयन करते हुए कहते हैं।
ये जो आगे के भी जो सूत्र थे ना ये ऊपर के जो, वो भी सब भूतबली के
मिले। कौन से अभी गाथाएं पढ़ी वो? हाँ। नहीं नहीं, वो गाथाएं अलग अलग ग्रंथों में से अनुवादक ने उद्धृत किए हुए। हाँ,
अभी अभी चालू होता है वो भूतबली
अभी। हाँ, ये भी अभी एक नंबर से ऊपर जो 6 नंबर लिखा है ना, निगलिए भैया। निगलिए भैया उसके लिए भी नीचे कोई उन्होंने रेफरेंस बताया, तिलोक पन्नति की गाथा बताइए, इष्टोपदेश के श्लोक बताए, धवला टीका बताइए। इस तरह से अलग अलग जगह कौन कौन से ऐसे ही अर्थ में गाथाएं आई है उसके रेफरेंस नीचे दिए उन्होंने। नमो जिनानम एक नंबर का जो सूत्र है, यही वहां मंगलाचरण के रूप में महाकर्म प्रकृति प्रावृत के प्रारंभ में गौतम गणधर द्वारा विरचित है। अर्थ, जिन भगवान को नमस्कार हो। विशेषार्थ, जिन शब्द से तात्पर्य उन श्रेष्ठ आत्माओं से है जिन्होंने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में निबिड़ रूप से निबद्ध, निबिड़ समझते वो कैसा अरण्य कैसा होता है, निबिड़ होता है यानी घनदाट जिसको कहेंगे। तो ये हाँ बहुत थिक वहां वाला बाला भरा हुआ, क्या भरा, किससे भरा था कि जिन्होंने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में निबिड़ रूप से निबद्ध 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 बंधा हुआ घातिया कर्म रूप मेघ पटल को दूर करके। वहां निबिड़ मेघ पटल का, ये निबिड़ ये विशेषण है, वहां अरण्य को भी देखते हैं, अंधकार को भी लगाते हैं, निबिड़ अंधकार है, घोर अंधकार है, इस तरह से। तो उसको दूर करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दानादि नव केवल लब्धियों को प्राप्त किया है। अश्विन भाई आप बताएंगे ये नव केवल लब्धि कौन सी है, ये उसमें बोलो ना।
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और 5 अंतर।
और 5 कौन से?
अनंत दान,
हाँ,
अनंत लाभ, अनंत
भोग,
भोग उपभोग
और वीर्य। तो पहले भी आप सुख और वीर्य बताया था। आपने पहले सुख और वीर्य बताया और अभी भी 5 ध्यान आदि 5 बता रहे, उसमें भी वीर्य लिया आपने। साइक सम्यक तो और साइक चारित्र है। देखो देखो कैसे बहुत आसान तरीके है ना, चार घातिया कर्मों के नाश से, ज्ञानावरण के नाश से, क्षय ज्ञान कहो अनंत ज्ञान कहो एक ही बात है, दर्शनावरण के क्षय से अनंत दर्शन क्षयिक दर्शन, फिर मोहनीय में दो भेद है, क्षयिक सम्यक क्षयिक चारित्र और अंतराय के पांच, ये मिलकर घाती कर्मों का नाश हुआ तो नव केवल लब्धि प्रकट हुई। पता है मुझे तो उन्होंने ट्रिक कर दी। तो जिन्होंने अनेक विषम भवों के गहन दुख प्रदान करने वाले कर्म शत्रुओं को जीता है, निर्जरा की है वे जिन है। यानी तो हमने तो ये तो चलते ही रहते हैं, कहां से अनादि से बात चल रही थी और चलती रहती है, हर भव में तो रागादि चलते रहते हैं, अज्ञान और रागादि चलते रहते हैं, नए नए कर्म बंद करते हैं, पुराने जिसकी स्थिति है वो तो उदय रूप फल देकर निकल चले जाते हैं, तो ये बात तो चली ही चली है। तो कहते विषम भवों के गहन दुख, यानी असंख्यात असंख्यात भवों के बंधे हुए कर्म भी पड़े हैं वहां पर, ऐसे कर्म शत्रुओं को जीता है, निर्जरा की है वे जिन है। वैसे कर्म को शत्रु कहना है तो उपचार से है, वो तो जीव जो है दुखी है तो अपने ही मोहादि से दुखी है। जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश किया है वे सकल अर्थात पूर्ण रूप से जिन कहलाते हैं, जिन जीत लिया उन्होंने, उनमें अरहंत और सिद्ध गर्भित है, आचार्य उपाध्याय और साधु एक दिश जिन कहे जाते हैं। यानी कि अभी जिन होने के मार्ग में है, पार्शली वो वितराग हो गए हैं, इसको एक देश जिन कहते हैं, इसलिए नमो जिनानम कहने से सबको नमस्कार हो गया।
हमने आगे के पुष्प पे देखा कि यहाँ पे देवेंद्र और उनको भी इतने व्याकुलता होती है, पर वो तो शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं ना।
हाँ, आपका प्रश्न है देवेंद्र और कौन चक्रवर्ती,
चक्रवर्ती
हाँ, वो शायिक सम्यक दृष्टि होने ही चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि सातवें नरक में भी तो जाते हैं, और सारे देवेंद्र सम्य दृष्टि यानी उस भव में हो गया ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो भी और भी केवल वो सौधर्म इंद्र वगैरह जो है विशेष, वो नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाले हैं, वो क्षायिक होने ही चाहिए ऐसा भी जरूरत नहीं, ऊपर के इंद्र सारे ही इंद्र होने, अभी सारे कहाँ के ग्रहवेग के सारे अहम इंद्र है, तो उसमें तो कितने मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है। तो समझना कि जिस पर वो लागू होता है उसके लिए लगाना। देखो नौ नंबर के पेज पर है, शंकाकार पूछते हैं इस पर विशेष प्रकाश डालने की दृष्टि से सूत्र के टीकाकार वीर सेनाचार्य कहते हैं यह सूत्र क्यों कहा गया है। देखो नीचे दो नंबर नीचे के फुटनोट पढ़ लेते हैं, एक और दो, सकलात्म प्रदेश निबिड़ निबद्ध घाती कर्म मेघ पटल विघटन प्रकटीभूत अनंत ज्ञानादि नव केवल लब्धिवान जिन्ह, ये गोमरसार जीव कांड की जीव तत्व प्रदीपिका में से ये उन्होंने ले लिया है। दो, अभी जो शंका में लिखा है ना इस पर विशेष प्रकाश डालने की दृष्टि से, थर्ड लाइन नहीं नहीं शंका की पहली लाइन है, यानी ऊपर से पांचवी लाइन पर है। हाँ ये नीचे थी तीसरी फुटनोट की तीसरी लाइन जो विशेष प्रकार, इन्हें वीरसेन स्वामी ने क्या लिखा है उसको यहाँ लिखते हैं कि मठम इदम उच्च दे, ये किस लिए कहा है, मंगल अट्ठम मंगल के लिए, किम मंगलम, आपको याद होगा धवला में पहले में मंगल क्या होता है, क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या छह बातें होती है ना मंगल का, किसके निमित्त से बताया है, क्योंकि वो सभी बातें आती हैं। तो किम मंगलम, मंगल क्या है, पूर्व संचय कर्म विनाशो, पूर्व संचित कर्म का विनाश वही मंगल है, यदि एवं तो जिनवयन विनिगयत्थादो अविसंवादेन केवल नान समानादो उससेनादि गणहर देवे ही वीरय सद्दरयणादो सवसुत्तादो तप पढ़न गुणन क्रियावा वदानम सव जीवाणम परिसमयम असंख्येज गुण शैलिये पूर्व संजित कम्म निज्जरा होदित्ति निफलादि सुत्तमिदि। तो कहते हैं कि ये शंका पूछते हैं कि ऐसे ऐसे अगर होते हैं तो ये तो सारे निष्फल हो जाएगी, सूत्र निष्फल हो जाएगा। असफलम इदम, यहाँ कहते ये सफल है। निफलम सुत्तज्जयनम तत्तो समुवजायमान कम्मक्खयस्स इत्थेव लम्बदोति। तो कहते न ऐसा देवसो, ये हम डायरेक्ट ऊपर से ही पढ़ेंगे क्योंकि ये प्राकृत पढ़ने से, क्योंकि धवला टीका में से ये सब लिया हुआ है और शुरुआत में ये सब चर्चा उन्होंने की थी स्वयं आचार्य ने। अब यहाँ वही हिंदी में उन्होंने डाला है कि समाधान पढ़ेंगे हम। मंगल के लिए कहा गया है, ये जो नमो जिनानम सूत्र बताया है वो क्यों कहा, तो मंगल के लिए कहा। पुनः प्रश्न उठता है कि मंगल क्या है, तो पूर्व संचित कर्मों का विनाश मंगल है। ये जो नीचे मैंने पढ़ा ना अभी प्राकृत, उसी का ये हिंदी यहाँ दिया हुआ है। शंका, यदि मंगल का यह भाव है तो यह सूत्र निष्फल है। कारण जिनेन्द्र के मुख से विनिर्गत है अर्थ जिसका, यानी जिनेन्द्र के द्वारा जिसका अर्थ बताया गया था, जो अविसंवाद से केवल ज्ञान के समान है, यानी जो जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसका कोई अविसंवाद, उसमें कोई पहले कुछ लिखा अन्यतर कोई ऐसा परस्पर विरोध तो कुछ है ही नहीं है, यानी जैसा केवल ज्ञान है वैसे उनकी वाणी है। तथा ऋषभ सेनादि गणधर देवों के द्वारा, ये ऋषभ सेन किसके गणधर थे, आदिनाथ भगवान के, तो आदि में सारे गणधर ले लेना। तो गणधर देवों के द्वारा जिनकी शब्द रचना की गई है, ऐसे सर्व सूत्रों के पठन मनन तथा क्रिया में प्रवृत्त संपूर्ण जीवों के प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणी रूप से पूर्व संचित कर्मों की निजरा होती है। क्या कहना चाहते हैं, ये मंगल करने का क्या प्रयोजन है, ऐसे भी जो सूत्र का पठन पाठन वगैरह कर रहे हैं उनके तो हो ही रही है। कदाचित यह मंगल सूत्र सफल है तो ग्रंथ रूप सूत्र का अध्ययन निष्फल है। क्या कहते हैं, ये प्रश्न क्यों अटकाने के लिए पूछा है। कैसे कहते कि मंगल करने से ही अगर सब होता है तो भगवान की वाणी सुनकर उसका पठन मनन वगैरह अध्ययन करते उनकी जो गुणश्रेणी निर्जरा वगैरह जो होती है कर्म निकल जाते हैं वो बेकार की हो जाएगी, खाली मंगल करो ना, ये कह रहे। और कहते अगर ये मंगल सूत्र जो नमो जिनानिम कहना इतना ही सफल है तो ग्रंथ रूप सूत्र का अध्ययन निष्फल है, बस इतना ही करो नमो जिनानम बाकी ग्रंथ पढ़ो मत। ऐसी शंका उठाई जाती कि दोनों ओर से पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न कर्मक्षय की उपलब्धि इसके ही द्वारा हो जाएगी। ये नमो जिनानम कहने से ही कर्मक्षय हो जाएगा तो फिर आगे का ग्रंथ पढ़ने की लिखने की जरूरत क्या थी। समाधान, ये मैंने अभी नीचे जो पढ़ा था ना प्राकृत में उसी का हिंदी है, यह ठीक नहीं है। सूत्राध्ययन द्वारा सामान्य रूप से कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु इस मंगल सूत्र से स्वाध्याय में विघ्नकारक कर्म का नाश होता है। देखो देखो, स्वाध्याय करने से तो कर्मों की निर्जरा होगी, परंतु ये मंगल क्यों किया जाता है, तो स्वाध्याय में जो विघ्नकारक कर्म है वो नहीं रहे, इसलिए इस कारण मंगल सूत्र का प्रारंभ हुआ। फिर शंका, तीव्र कषाय इंद्रिय तथा मोह का विजय करने से सकल जिनों को नमस्कार पाप नाशक हो, कारण उनमें संपूर्ण गुणों का सद्भाव पाया जाता है, किंतु यह बात देश जिनों में नहीं पाई जाती। देश जिन्हें किसको कहा था अभी अभी, आचार्य उपाध्याय और साधु को देश जिन कहा था। तो कहते कि कषाय इंद्रिय और मोह का विजय तो संपूर्ण करने वाले जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार तो हम पाप नाशक समझ सकते हैं क्योंकि उनमें संपूर्ण गुणों का सद्भाव है, परंतु देश जिनों में तो इतना नहीं पाया जाता है क्योंकि वो पार्शल है। अतः नमो जिनानम सूत्र द्वारा अरहंत सिद्ध के सिवाय आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश्वर का नमस्कार मानना युक्तियुक्त नहीं है। ये सब धवला के टीकाकार विशेष आचार्य ने ये धवला के शुरुआत में पहले भाग में कहा था समाधान, यानी नमो जिनानम कहने से पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार समझते हो तो ये तो हो नहीं सकता, ऐसा उसका शंकाकार का कहना है। तो कहते रत्नत्रय की अपेक्षा पांचों परमेष्ठी समान है, कारण सकल जिनों के समान एक देश जिनों में भी रत्नत्रय विद्यमान है। ये रत्नत्रय क्या होते हैं? हाँ, समय दर्शन ज्ञान चरित्र। देवत्व के लिए रत्नत्रय के सिवाय अन्य कारण नहीं है। देवत्व यानी वो स्वर्ग वाले देव नहीं, भगवान पना परमात्मा पना जिसको कहेंगे। इससे सकल जिनों के समान देश जिनों को नमस्कार भी कर्म क्षयकारी जानना चाहिए। शंका, सकल और असकल जिसको हम देश कहा ना उसको असकल कहा। सकल और असकल जिनों के रत्नत्रय में समानता नहीं पाई जाती क्योंकि वो तो पूर्ण वितराग है, परिपूर्ण हुए हैं उनके रत्नत्रय। संपूर्ण सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय और असंपूर्ण रत्नत्रय में समानता का विरोध है। संपूर्ण रत्नत्रय का कार्य असंपूर्ण रत्नत्रय नहीं करते, कारण वे असमान है। ज्ञान दर्शन और चारित्र में समानता की उपलब्धि नहीं पाई जाती है, ये प्रश्न है। समाधान, असमानों का कार्य असमान ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके लिए दृष्टांत देते हैं। संपूर्ण अग्नि के द्वारा क्रियमान दाह कार्य की उपलब्धि उसके अवयवों में भी देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? कोई बहुत बड़ी मशाल जला करके कोई जलाने आया तो उससे भी जल सकता है, और वो थोड़ी आप तो लाइटर वो गैस लाइटर से इतनी सी छोटी चिंगारी से जलाते हैं तो जलाने की कार्य तो दोनों से हो सकता है। उसका अवयव में नहीं, उसके छोटे रूप में भी हो सकता है। अमृत के शतघटों द्वारा संपादित किया जाने वाला निर्विषीकरण रूप कार्य चुल्लू भर अमृत में भी पाया जाता है। अमृत का कार्य क्या है? विष को निर्विष कर देना। तो वो कार्य तो एक घूंट भर या चुल्लू भर अमृत से भी हो सकता है। रत्नत्रय की अपेक्षा देश तथा सकल जिनों में भेद नहीं पाया जाता। देखो देखो, रत्नत्रय तो रत्नत्रय है, उसमें कोई भेद नहीं है।
इसका अर्थ ऐसा ले सकते हैं कि क्वालिटी वाइज कुछ फर्क नहीं, क्वांटिटी वाइज होगा।
हाँ, द्रव्यातिक नहीं की अपेक्षा तो उसमें तो सेम है, रत्नत्रय तो रत्नत्रय है। यानी वो भले थोड़े में है फिर भी वो उतना ही कार्यकारी, बस इतना ही बताना है। अब पर्यायार्थिक नयाश्रित जीवों के कल्याणार्थ गौतम स्वामी आगामी सूत्रों को कहते हैं। यानी नमो जिनानम कहने से सभी इंक्लूड हो गए। अब उसमें से एक एक का नाम लेके उसको अलग अलग, उसको कहेंगे पर्यायार्थिक नयिकावलंबन लेना। नमो ओहि जिनानम, अवधि ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ, यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति आगे भी करनी चाहिए, क्योंकि नमो जिनानम बात आई थी ना, तो ये जिनानम शब्द सब जगह अभी लगेगा। अनुवृत्ति का अर्थ है कंटिन्यूटी। अवधि ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो, ये हो ना विशेषार्थ में बता रहे हैं। जिन शब्द की अनुवृत्ति आगे भी करनी चाहिए, अवधि ज्ञानी देव नारकी मनुष्य तथा तिर्यंच भी होते हैं। अवधि ज्ञानियों को नमस्कार ऐसे नहीं कहा, अवधि ज्ञानी जिनों को नमस्कार। तो जिन कहने से वो देश जिन या अभी केवल ज्ञानी तो अवधि ज्ञानी नहीं कहेंगे, परंतु यहाँ तो मुनि राजों की अपेक्षा लेना है। हाँ, असंपूर्ण और संपूर्ण, तो जो सामान्य से देव नारकी मनुष्य तीरेंच भी अवधि ज्ञानी होते उनको सबको नमस्कार नहीं किया है। उन सबको नमस्कार करने से क्या कर्मों की निर्जरा हो सकती है? उससे तो कर्मों का बंध ही होगा। ख्याल में आती है ना? जिन शब्द का ग्रहण करने से ऐसी आशंका का निराकरण हो जाता है जिन कहने से, क्योंकि वो तो उसमें पंच परमेश्वर ही आते हैं केवल, उसमें अवधि ज्ञानी जिन, जिसको देखो जिनेन्द्र भगवान को भी जैसे कहेंगे भूतपूर्व न्याय से या नए से भी, क्योंकि द्रव्यार्थिक नए जिसको हम कहें द्रव्य निक्षेप से, द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य निक्षेप से उनको भी अवधिजन कह सकते हैं। पूर्व में थे अवधि ज्ञान का नाश हुआ केवल ज्ञान प्रकट हुआ एक अपेक्षा से उसको भी कहेंगे, और मुनियों को तो कह ही सकते हैं। इससे रत्नत्रय से भूषित अवधि ज्ञानियों को नमस्कार करना यहाँ इष्ट है। रत्नत्रय से भूषित कहने से मुनियों की अपेक्षा लेना यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी चौथे पांचवें वालों को तो नमस्कार योग्य नहीं, मुनि योग्य उनका नमस्कार नहीं होता है। नमो परम ओहि जिनानम, परमावधि ज्ञानधारी जिनों को नमस्कार है। अवधि ज्ञानी कहने से, अवधि ज्ञानी तो देशावधि भी होते हैं, परमावधि भी होते हैं, सर्वावधि भी होते हैं। यहाँ एक एक का अलग अलग देखो, पहले जिन कहा फिर अवधि जिन कहा, अवधि जिन में तो तीनों प्रकार के आते, फिर उसके और भेद किए, ऐसे भेद के भेद करते करते इन सब का ये इसको कहेंगे पर्यायार्थिक नए से, उनके भेद प्रभेद करके ये नमो जिनानम वाला ही सूत्र सब जगह कैसे कंटिन्यूस है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। ये नमो परमोहि जिनानम हुआ ना तीन नंबर का, परमावधि ज्ञानधारी जिनों को नमस्कार हो। नमो सवोहि जिनानम अर्थ सर्वावधि ज्ञानधारी जिनों को नमस्कार हो। तो ये परमावधि पावरफुल है कि सर्वावधि है? हाँ तेजन सर्वावधि, तो उसके कितने भेद होते हैं? एक ही है। और परमावधि के असंख्यात भेद है। परमावधि के भेद कितने हैं? कितने असंख्यात है? मेरे ख्याल से अग्निकायिक जीवों के अवगाहना के भेद और उनकी संख्या ऐसे कुछ है, उसका आपस में गुणाकार करना इतने उसके बहुत असंख्यात, बहुत बड़ी असंख्यात संख्या है वो। हाँ असंख्यात हो पर उसका एग्जैक्ट उसका प्रमाण है वो, हाँ जीवकांड में है ना, देखना है लेफ्ट साइड ज्ञान मार्गणा में होगा। जीवकांड कहाँ है? हाँ अरे कौन सी अपेक्षा, उसमें तो हम देखे ना द्रव्य परमावधि में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के समान भेद होते हैं, देशावधि में ही इतने द्रव्य के भेद होने पर एक क्षेत्र का भेद होता है, उतने होने पर एक काल का भेद होता है, वो तो देशावधि में डिफरेंस है। परमावधि में तो सब में एक एक ही भेद होता है अलग अलग। उसके जो ध्रुव भाग हर के होते 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 हैं उसके इतने भेद होते हैं। देखो देखो 535 पेज पर अग्निकाय की अवगाहना के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट जो भेदों का प्रमाण है, अग्निकाय की अवगाहना ने कैसे सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त लेके पूरे अग्निकाय की जितनी कुछ अवगाहना हो सकती है उससे अग्निकाय के जीवों के प्रमाण को गुणा करने पर, मैंने यही कहा था ना अभी, अग्निकाय जीवों की अवगाहना के भेद यानी सूक्ष्म क्या, अरे वो तो मिनिमम मैक्सिमम में भी पर्याप्त उनकी जो मैक्सिमम है वहां पर, तो उसके जो हमने अवगाहना के भेद है कितने असंख्यात हो गए, खाली उसको क्या करना है अग्नि का एक जीवन के प्रमाण से गुणा करना है। वो 535 414 नंबर की गाथा है, अग्नि उसकी संख्या से गुणा करना है। अवगाहना के भेद, अवगाहना को नहीं, अवगाहना के भेद,
वो अग्निकाय के संख्या से,
हाँ, मल्टीप्लाइड बाय अग्निकाय जीवों की संख्या, उसमें सूक्ष्म बादल पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, वो भी असंख्यात होते हैं, क्योंकि हमने वो अवगाहना के टेबल देखे थे जीव समासों में। क्या अपन उसमें भेद कितने हो गए तो असंख्यात होते हैं। देखो पहले कोठे में निगोद वायु तेज तीन नंबर पर था, तेज का एक जीव, उसकी जघन्य अवगाहना, फिर बादर की, फिर अप्रतिष्ठित वगैरह की, फिर चार नंबर पर सूक्ष्म निगोद की, और फिर सात नंबर में तेज का एक, आठ और नौ, नौ नंबर के कॉलम तक गए थे बादर तेज का एक की उत्कृष्ट अवगाहना, बहुत भेद हो गए उसके अंदर। पेज नंबर ये है 188, अवगाहना के भेद 188 पेज पर है जीव कांड में। गाथा हमने 414 बताई थी ना पहले, 535 पर, हाँ, जीव कांड में। अभी अवगाहना के भेद वो हमने जीव समास में देखे थे, उनकी संख्या भी आगे काय मार्गणा में देखी थी। हाँ, असंख्यात लोग, छोटा वाला असंख्यात लोग है, फिर भी असंख्यात है। हाँ, यानी इतने उसके भेद है, ये कहना चाहती थी मैं। तो नमो सवो ही जिनानम, अर्थ सर्वावधि ज्ञानधारी जिनों को नमस्कार हो, ये दोनों ही जो है संयमधारी होते हैं और तद्भव मोक्षगामी होते हैं, चरम शरीरों को, हाँ, दोनों ही, परमावधि वाले भी और सर्वावधि वाले भी। नमो अनंतो ही जिनानम, अनंत अवधि वाले जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ, अनंत है अवधि यानी मर्यादा जिसकी, ऐसे केवल ज्ञान धारक अनंतावधि जिनों को नमस्कार हो। देखो अनंतावधि क्यों, अवधि क्या कहती है, मर्यादा, अभी उनकी मर्यादा ही अनंत है, नहीं तो कोई मर्यादा बिना वाला ही है एक्चुअली, देखो तो उसको अनंतावधि कह दिया। जिसकी मर्यादा अनंत है, नहीं जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, ऐसे केवल ज्ञानी को ही अनंतावधि कह दिया, क्योंकि अवधि में मर्यादा कौन सी होती है, द्रव्य की, यानी कितने सूक्ष्म तक जानते उसकी मर्यादा है, कितने क्षेत्र तक जानते उसकी मर्यादा है, क्योंकि सर्वावधि वाला भी असंख्यात लोक तक जानेगा, वहां तक पुद्गल नहीं है, पुद्गल तो एक ही लोक में है, परंतु अनंत लोक होते ना तो वहां तक जानने की उसकी कैपेसिटी है, उसकी सामर्थ्य कितनी उसको बताते वो क्षेत्र की अवधि, परंतु फिर भी अनंत को अनंत तक नहीं जानेगा, क्षेत्र के अनंत नहीं, असंग मर्यादा है, काल में आगे पीछे कितना जानेगा, वो भी असंख्यात लोग है, काल का भी क्षेत्र में काल को भी नापने की पद्धति है, तो असंख्यात लोग उसका काल भी है, पर अनंत तो को नहीं जाने, अनंत काल को नहीं जानेंगे। अब ये केवल ज्ञानी कैसे, उनके कोई मर्यादा नहीं है, तो उसको अनंतावधि कहा। आगे बढ़ते अभी पेज नंबर 11 पर। अब ये कोष्ठ बुद्धि बीज बुद्धि वगैरह जो अलग अलग बातें हैं वो यहाँ पर आएगी। देखो नमो कोष्ठ बुद्धिनम, अर्थ कोष्ठ बुद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ, जिस प्रकार किसी कोठे में पृथक पृथक तथा सुरक्षित बहुत से धान्य के बीजों का संग्रह रहता है, उसी प्रकार कोष्ठ बुद्धि नामक रिद्धि में परोपदेश के बिना ही तत्वों के अर्थ ग्रंथ तथा बीजों का अवधारण करके, बीज यानी वो तो एक शॉर्ट अक्षर से भी वो पूरा पूरा जान लेते, उसको बीज कहते हैं उसका, पृथक पृथक अवस्थान किया जाता है, इस बुद्धि में कोष्ठ के समान भिन्न भिन्न बहुत तत्वों की अवधारणा रहती है। ये तत्वार्थ राजवार्तिक अध्याय 3 पृष्ठ 143 से उन्होंने ये प्रस्तुत कर दिया है। तिलोय पन्नति में कहा है, उत्कृष्ट धारणा संपन्न कोई पुरुष गुरु के उपदेश से नाना प्रकार के ग्रंथों से विस्तार पूर्वक लिंग सहित शब्द रूप बीजों को अपनी बुद्धि से ग्रहण करके बिना मिश्रण के अपनी बुद्धि रूपी कोठे में धारण करता है, उसे कोष्ठ बुद्धि कहते हैं। जैसे किचन में आप जो अनाज दालें वगैरह लाते तो अलग अलग बरनी में भर के रखते हैं, ऐसे अपनी बुद्धि से उसको एक दूसरे में मिलाए बिना जिस ग्रंथ का उसी में इस तरह से, हमें तो याद नहीं आता कहाँ पढ़ा था क्या। हाँ, तो उनके तो बुद्धि में जैसे कोष्ठ है अलग अलग कंपार्टमेंट में स्टोर करते हैं, वैसे उनके बुद्धि में स्टोर रहता है धारणा में। हाँ, वो क्योंकि वो तत्वार्थ राजवार्तिक में ये इस तरह से उसकी बात आई थी, कोष्ठ बुद्धि नामक रिद्धि है, वो रिद्धि स्वयं से प्रकट हुई है। और यहाँ कहते हैं उत्कृष्ट धारणा संपन्न गुरु की बात, उसको कोष्ठ बुद्धि कहा था। नमो बीज बुद्धि। हाँ, हाँ ना, हाँ, धारण करने वाला नहीं शिष्य, और ऐसे ना वो धारणा ही नहीं, वो सुनकर धारणा के ऐसे भी हो सकते हैं, और जिनको अपनी रिद्धि प्रकट हुई ऐसे भी हो सकते हैं। उनको भी किया दोनों ओर से। देखो विशेषार्थ में उन्होंने दो बात है, तत्वार्थ राजवार्तिक का एक प्रस्तुत किया है और तिलोक पुण्यति का एक प्रस्तुत किया है, दोनों को ही लेना, दोनों को नमस्कार किया, जिसको जिसको कोष्ठ बुद्धि है उन सबको। नमो बीज बुद्धिनम, अर्थ बीज बुद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। बीज यानी वो तो एक जैसे दिव्य ध्वनि में ओमकार है, उसमें तो बीज रूप है, उसमें से कितना ही पूरा इतना द्वादशांक का अर्थ खुलता है। ऐसे इसको बीज यानी जैसे ता से ताक भात कहते मराठी में, वैसे हाँ बीज बुद्धिधारी जिनों को नमस्कार। जैसे सम्यक प्रकार फल बखर से तैयार की गई उपजाऊ भूमि में योग्य काल में बोया गया एक भी बीज बहुत बीजों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार नौ इंद्रियावरण यानी मन संबंधी आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम प्रकर्ष से यानी ज्ञान का उघाड़ बहुत अधिक है, एक बीज पद के ग्रहण द्वारा अनेक पदार्थों को जानने वाली बीज बुद्धि है। यानी बीज पद के द्वारा वो सब जान लेते हैं, जैसे हम कोई चिन्ह देखते हैं और उसमें से अर्थ भाषित होता है, इस तरह से वो बीज पद के द्वारा बहुत पदार्थों को जान लेते हैं। हाँ देखो पेज नंबर 11, यानी बीज पद है वो तो एक शॉर्ट में कुछ उन्होंने सुना और उसमें से पूरे पदार्थों का ज्ञान होना, उसको बीज बुद्धि कहते हैं। तिलोय पन्नति में कहा है नौ इंद्रियावरण यानी मन संबंधी ज्ञानावरण है, उसको नौ इंद्रियावरण कहते हैं, श्रुत ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय इन तीन प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षोभम से विशुद्ध हुई किसी भी महर्षि की जो बुद्धि, मुनिराज की जो उनका उघाड़ ज्ञान का उघाड़ है बहुत ज्यादा, संख्यात स्वरूप शब्दों के बीच में से, क्योंकि शब्द तो संख्यात है ना, जिनवानी के शब्द भी संख्यात है, वो असंख्यात तो नहीं कहेंगे, लिंग सहित एक भी बीजभूत पद को, लिंग सहित यानी उसका कोई चिन्ह पर के पद यानी उसका शब्द कहो, पर के उपदेश से प्राप्त करके, ये त्रिलोक पन्नति में पर के उपदेश से उस पर जो उस पद के आश्रय से संपूर्ण श्रुत को विस्तार कर ग्रहण करती है वह बीज बुद्धि है। यानी शॉर्ट में एकाध पद कहो, एकाध जो कुछ है उसके द्वारा पूरा वो अंग को या वस्तु कहो या उसके जो जितने प्रावृत वगैरह है उसको समझ लेना, जान लेना, बुद्धि में धारण करना, वो बीज बुद्धि है। नमो
पहले के जमाने में
हाँ ठीक है
आवाज श्लोक आवाज श्लोक पहले के जमाने में जब कुकर नहीं था तो भात सीझाए कि नहीं देखते समय क्या करते थे, एक चावल के दाने को दांत के देखते थे, तो वो सीझ गया तो बाकी सब सीझ, वो बीज बुद्धि।
देखो नमो पदानुसारिणम, ये तीसरा अर्थ, पदानुसारी रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ। दूसरे व्यक्ति से एक पद के अर्थ को सुनकर, अगर ये पद क्या होता है, ऑर्डिनरी कहना है तो शब्द को पद कहेंगे, अक्षरों का समूह वो पद हुआ। पद के कितने भेद होते हैं मालूम है? एक होता है अर्थ पद, एक होता है प्रमाण पद, एक होता है मध्यम पद। अर्थ पद यानी जो हम वाक्य रचना करते हैं, जैसे राम ने आम खाया, अक्षरों को जुलाकर हमने शब्द तैयार किए, उससे वाक्य बना, हमें उससे अर्थ भाषित हुआ। अब कहते हैं प्रमाण पद किसको कहने है? तो निश्चित अक्षरों की संख्या होती है, जैसे 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है, नमः समय साराय 8, स्वानुभूत्या चकासते 8, 8 16 हुआ, और दूसरा भी दूसरी लाइन भी 16 की, ये 32 अक्षरों का वो प्रमाण निश्चित है। जैसे हमारे अन्य अन्य जो है ना, शार्दुल विक्रीडित मंदाक्रांता जो कुछ भुजंग प्रयात, तो उसके वो निश्चित पदों की फिक्स अक्षरों की जो होती है उसको कहेंगे प्रमाण पद। काव्यों में वगैरह होता है वो प्रमाण पद होगा। और जो मध्यम पद है उसमें जिनवाणी की रचना हुई, पूरे द्वादशांग की रचना जिन मध्यम पदों से हुई है, हाँ उसमें भी अपुनरुक्त अक्षर नॉन रिपीटेड। वही हाँ उसी को अपुनरुक्त कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कोई नॉवेल आपने पढ़ी तो उसमें से लेटर्स कितने हो गए अपुनरुक्त, 26, ऐसा समझना वहां। अब वो कैसे निकालना वो सारा हमने ज्ञान मार्गना में देखा। हाँ द्वादशांग की रचना मध्यम पद में होती है, तो जैसे छोटे में छोटा पहला आचारांग है उसमें 18,000 पद बताए हैं, तो एक एक पद में अक्षर कितने हैं, तो 1634,83,07,888 अक्षरों का एक पद होता है, और ऐसे पदों में द्वादशांग की रचना होती है, उसको मध्यम पद कहते हैं। अर्थपद ने हम ऑर्डिनरी जो शब्दों की योजना करके वाक्य बनाते हैं ना उसको अर्थपद कहते हैं, वो बोलने से हमको कुछ अर्थ भाषित होता है वो अर्थपद, यानी वहां कोई प्रमाण उसका निश्चित नहीं है। अभी इतना पढ़ लेते, देखो विशेषार्थ, दूसरे व्यक्ति से एक पद के अर्थ को सुनकर आदि मध्य तथा अंत के शेष ग्रंथार्थ का निश्चय करना पदानुसारित्व है। अभी उसमें वो एक पद छोड़ दो पूरा ही 1634 वाला, पर यानी वो ग्रंथ में से कोई एक शब्द को आपने सुना पढ़ा जो कुछ है, और पूरा ग्रंथ के आदि से अंत तक का पूरा ख्याल आ जाना, या क्या कहते हैं आदि मध्य तथा अंत के शेष ग्रंथार्थ का, ग्रंथ के अर्थ का निश्चय करना पदानुसारित्व है। जैसे समय सार के कोई एक गाथा के एक शब्द हमने पकड़ा और उससे पूरा समय सार आगे पीछे का जान लिया, यह अनुश्रोत्र प्रतिश्रोत्र तथा उभय रूप तीन प्रकार का है। तिलोय पन्नति में कहा है जो बुद्धि आदि मध्य अथवा अंत में गुरु के उपदेश से एक बीज पद को ग्रहण करके उपरिम ग्रंथ को ग्रहण करती है वह अनुसारिणी बुद्धि है। अनुश्रोत्रिणी अनुसारिणी, अनुसारिणी वो फॉलो करती है गुरु के उपदेश से आदि मध्य अथवा अंत में एक बीज पद को धारण करके जो बुद्धि अधस्तन ग्रंथ को जानती है वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहलाती। अधस्तन ने पहले का, पहले नीचे का, अधस्तन का अर्थ होता है नीचे का। उपरिम ग्रंथ है आगे वाला ग्रंथ, अधस्तन ने पीछे वाला। जो बुद्धि नियम अथवा अनियम से एक बीज पद को ग्रहण करके उपरिम और अधस्तन ग्रंथ को एक साथ जानती है वह उभय सारिणी है। ये पदानुसारित्व के तीन भेद है। वो त्रिलोकपन्नति गाथा यहाँ उसके नंबर बता दिए। अब हम यही रुकेंगे। अभी यहाँ तक तो हमें ये नमो जिनानम के सभी भेद चल रहे। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं